ओम शांति। आज भट्टी का कौन सा दिन है? तीसरा दिन। कैसा अनुभव हो रहा है? हाथ खड़ा करके बताएं। योग का सुख मिल रहा है? योग में सुख है या नहीं है? है ना? दुनिया में योग को बोरिंग विषय माना गया है, परंतु बाबा ने जो योग हमें सिखाया है इसमें बहुत आनंद है, बहुत मनोरंजन है। बस जरूरत है योग की गहराई में जाने की, क्योंकि जब तक हम योग की गहराई में जाते नहीं हैं तब तक उस सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ऊपर ऊपर का योग हमें वो सुख नहीं देता है जिसकी जरूरत आत्मा को है। आत्मा को सुख चाहिए, आत्मा को धन नहीं चाहिए, आत्मा को वैभव नहीं चाहिए, आत्मा को साधन सुविधाएं नहीं चाहिए, परंतु उनसे जो सुख मिलता है हमारा मन उसके पीछे भागता रहता है, और वो सुख हमें योग से मिलता है। जब योग से वो सुख नहीं मिलता है तो मन बाहर की दुनिया की ओर जाता है, विकारों की ओर जाता है, साधनों की ओर जाता है, धन की ओर जाता है, मनोरंजन की ओर जाता है। तो योग अपने आप में एक बहुत ही सुखमय विषय है, परंतु बाबा कहते हैं कि हीरे मोती, अनुभवों के सुख शांति के हीरे मोती तब मिलेंगे जब हम योग की गहराई में जाएंगे। आज भी बाबा ने कहा कि बाबा हमें नजर से निहाल करता है। फिर दूसरी लाइन में बाबा ने कहा कि जो निरंतर योग में रहते हैं वो निहाल हो जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, उनकी झोली भर जाती है। इन दोनों लाइन में कनेक्शन है, हमने इस पर गौर किया। बाबा कहते हैं नजर से निहाल करता हूं, फिर बाबा कहते हैं कि जो निरंतर याद में रहते हैं वो नजर से निहाल होते हैं, अर्थात भगवान की नजर उन पर पड़ती है जो निरंतर उसकी याद में रहते हैं। एक बार मुरली सुन लिया, सुबह में थोड़ा योग कर लिया, शाम को थोड़ा योग कर लिया, बाबा कहते हैं इससे बात बनेगी नहीं, इससे जीवन में कुछ बहुत अधिक प्राप्ति नहीं होगी। अगर जीवन में हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमें पुरुषार्थ में अपनी रुचि को बढ़ाना पड़ेगा। तो भगवान की नजर उन पर पड़ती है जो निरंतर याद में रहते हैं, परंतु निरंतर याद में रहना ये कोई सहज विषय नहीं है। बेशक बाबा जो है हम बच्चों को कहते हैं कि ये सहज योग है, सहज ज्ञान है, परंतु इतना सहज होता तो सतयुग में केवल 9 लाख आत्माएं ही नहीं पास हो पाती, 700-800 करोड़ आत्माएं आजकल पूरे धरती पर हैं, उसमें से केवल 9 लाख आत्माएं ही क्वालिफाई कर पाती हैं सतयुग के लिए। तो ये इतना सहज भी नहीं है। पुरुषार्थ के लिए बहुत सारी बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। एक योगी को 2 बातों का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें तपस्वी बनना है तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन दोनों बातों का ज्ञान होना चाहिए। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये तो पता है कि क्या करना है, परंतु बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि क्या नहीं करना है। या पता भी है तो उस पर हमारा ध्यान उतना रहता नहीं है। इसलिए आज का जो विषय है, मन को शांत कैसे रखें। रखें। हमारे पुरुषार्थ की विधि में एक विधि ये भी है कि हम यदि योगी बनना चाहते हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारा मन शांत रहे। अगर मन में बहुत अधिक विचार चल रहे हैं, मन में बहुत विचार उठ रहे हैं, व्यर्थ के विचार, नकारात्मक विचार, तो हम कभी भी योग नहीं कर पाएंगे। और हमें से बहुतों की ये शिकायत रहती है कि जब भी हम योग में बैठते हैं मन इधर उधर भटकता है। मन भटके ना, मन शांत होता जाए धीरे धीरे, रोज रोज हमारे मन की गति कम होती जाए, ये बहुत आवश्यक है एक योगी बनने के लिए। परंतु हमारा मन सदैव शांत कैसे रह सकता है, उस पर चिंतन करने की जरूरत है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं जो हमारे मन में व्यर्थ संकल्प उत्पन्न करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें उनका ज्ञान नहीं है, हमें उनका ज्ञान भी है, क्योंकि हम मुरली सुनते हैं, क्लासेस सुनते हैं, परंतु उन बातों पर हमारा ध्यान नहीं रहता है, हम उस पर पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो आज कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमारे मन को चंचल बनाते हैं उन पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उन पर पुरुषार्थ करें। ज्ञान सुनना ही आवश्यक नहीं है, ज्ञान का चिंतन करना, उसे अपने आचरण में उतारना, ये बहुत जरूरी है। मन को अशांत करने वाले अनेक कारण हैं, उन सब की चर्चा तो इतने कम समय में नहीं की जा सकती है, परंतु कुछ बातों की चर्चा हम यहाँ जरूर करेंगे और कुछ बातें आप सब अपने चिंतन से निकालें और फिर उस पर पुरुषार्थ करें। और मन को चंचल बनाने का सबसे पहला कारण है मन में भरा हुआ व्यर्थ। जिस तरह से पेट में हम जो कुछ डालेंगे, पेट उसका ही चिंतन करता है, उसका ही पाचन करता है, उसी तरह से मन में हम जो कुछ डालते हैं, इन आंखों के द्वारा, इन कानों के द्वारा, मन बार बार उसका चिंतन करता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये जो दो कर्मेंद्रियां है ना, आंख और कान, इस पर तुम्हारा बहुत अधिक ध्यान रहना चाहिए। हम इस संसार में रहते हैं परंतु ये सारा संसार हमारे लिए नहीं है, इसलिए पूरे संसार के प्रति अपने मन को बिखेरना ये आवश्यक नहीं है। हम एक दुकान पर जाते हैं, हम पूरी दुकान खरीद करके तो नहीं लाते ना, हमें जो चाहिए वही उस दुकान से खरीदते हैं। इस संसार से भी हमें वही लेना है जो हमारे लिए जरूरी है, आवश्यक है, हमारी साधना के लिए सहायक है। सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, सारे दिन के दिनचर्या में इन आंखों से और इन कानों से हम व्यर्थ की बातें अपने मन में भरते रहते हैं। जो कुछ देखते और सुनते हैं सब कुछ हमारे मन में समाता जाता है और वो तब इमर्ज होता है, खास करके जब हम योग में बैठते हैं। जब हम व्यस्त रहते हैं कारोबार में, सेवा में, तब वो संकल्प इमर्ज नहीं होते हैं, परंतु जब हम कभी खाली बैठे हों या योग में बैठे हों, तब वो बातें याद आती हैं, मन बार बार उनको रिवाइंड कर करके देखने की कोशिश करता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जितना हो सके अपने मन को इन बातों से खाली रखो। परंतु एक दूसरी समस्या ये भी है कि खाली मन भी भटकता है। दुनिया में कहावत है खाली मन शैतान का घर। शैतान अर्थात जो दुख दे, जो हमें तंग करे, बुरे संकल्प, व्यर्थ संकल्प, दुखदाई संकल्प, पांच विकारों से ग्रसित संकल्प, ये हमें दुख देते हैं। तो यदि हम अपने मन को खाली करते हैं, किसी भी विधि यदि हमने अपने आंखों पर अपने कानों पर नियंत्रण स्थापित कर भी लिया और हमने सारे बाहर के इनपुट बंद कर दिए और मन यदि खाली है तो भी भटकता है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान से अच्छी बातों से अपने मन को भरो। खाली रहना मन की फितरत नहीं है, मन कभी भी खाली नहीं रह सकता है, मन को कुछ न कुछ तो सोचने के लिए चाहिए। तो यदि हम व्यर्थ बातों से मन को रिक्त करते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि मन को अच्छी बातों से भरें, अच्छी किताबें पढ़ें। बाबा के बहुत सुंदर सुंदर साहित्य हैं, मुरली का अध्ययन करें, अच्छी क्लासेस सुने और उस पर चिंतन करें। धीरे धीरे मन का व्यर्थ समाप्त होगा, मन हमारा शांत रहने लगेगा। हम चलते हैं सड़क पर, कारोबार में, सारे दिन की दिनचर्या में रहते हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए हमारी आंखें उतनी ही देखें जितना हमारे लिए आवश्यक है। हम सड़क पर जा रहे हैं, दाएं क्या है बाएं क्या है इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हमारी रुचि दाएं देखने में ना हो, बाएं देखने में ना हो, हमें हमारा केवल आगे का रास्ता ही दिखाई पड़े। दो लोग आपस में बैठ करके कुछ बातें कर रहे हैं, हमारी रुचि रहती है संसार को सुनने की, उसको जानने की, हम कान लगा करके सुनते हैं ये क्या बातें कर रहे हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, फिर भी हम सुनना चाहते हैं। हमने व्यर्थ को अंदर भेजा जो हमारे काम का नहीं है। अब जब योग में हम बैठते हैं उन दोनों की वो बातें याद आती हैं और हमारा मन परमात्मा से जुड़ नहीं पाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये दो कर्मेंद्रियां एक योगी को बहुत धोखा देती हैं, इन पर नियंत्रण होना चाहिए। हम रोज किसी शांत एकांत स्थान में बैठकर अपने आप से बातें करें, मन को समझाएं कि हे मन, तुम्हें वही देखना है जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, वही सुनना है जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। सब कुछ सुनने की जरूरत नहीं, सब कुछ देखने की जरूरत नहीं। ये एकांत में बैठकर खुद से बातें करना, खुद को समझाना, ये आत्म परिवर्तन की एक बहुत सुंदर विधि है, सहज और बहुत शक्तिशाली विधि है। हम कभी एकांत में बैठते ही नहीं है। बाबा कहते हैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ। अगर आप शहरों में रहते हैं तो फिर तो एकांत का स्थान मिलेगा ही नहीं, गांव में तो मिल भी जाता है। बाबा कहते हैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ, बैठ करके अपने आप से बातें करो। हमारा मन एक छोटे बच्चे की तरह है, उसको जो बात समझाएंगे वो समझ जाएगा। थोड़ा समय लगता है पर वो समझता है। मन को एक ही बात बार बार समझाए, हमारे मन का व्यर्थ धीरे धीरे कम होने लगेगा, जीवन का सुख मिलेगा। अगर मन से व्यर्थ कम हो जाए तो जीवन का आनंद आने लगता है, एक अजीब सुख, एक अजीब सी शांति जीवन में आने लगती है। तो पहली बात, पहली धारणा, हम अपने आंख और कान पर नियंत्रण स्थापित करें। मन को चंचल करने वाला जो दूसरा कारण है वो है होल्डिंग नेचर, किसी भी बात को पकड़ करके रखना, ये दूसरा बड़ा कारण है। जीवन है तो समस्याएं भी होंगी, परंतु बाबा क्या कहते हैं, बच्चे इस संसार में कुछ भी स्थाई नहीं है, न सुख स्थाई है और न दुख स्थाई है। सुख भी आता है चला जाता है, उसी तरह से दुख भी आता है और वो चला जाता है। सबका अपना अपना समय है, उस समय का इंतजार करो। जीवन में कोई भी विघ्न बाधा आती है पकड़ के नहीं रखना है, छोड़ देना है उसे। ये होल्डिंग नेचर मन में बहुत व्यर्थ पैदा करता है। किसी ने अपमान कर दिया, कुछ नुकसान हो गया, किसी ने समय पर हमारी मदद नहीं की, किसी बहुत अपने से विश्वासघात मिल गया, ऐसी बहुत सारी बातें जीवन में आती हैं जो मन में व्यर्थ संकल्प पैदा करती हैं, और ये व्यर्थ संकल्प हमें योगी नहीं बनने देते। बाबा ने कहा सबको छोड़ते जाओ, छोड़ेंगे तो खुश रहेंगे, हल्के रहेंगे। इस संसार में सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है, इस संसार में सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है, एक छोटा बच्चा। आप सबके घरों में बच्चों तो होते हैं ना, आप सबने देखा होगा छोटे बच्चों को। भगवान ने हर इंसान को जन्म से ही दो शक्तियां दी हैं, एक भूलने की शक्ति और एक याद रखने की शक्ति। और बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम इस धरती पर जा रहे हो, जब तुम देह के तम आओ, देह के बंधन में आओगे, तुम्हारी यात्रा शुरू होगी, तो इन दो शक्तियों की तुम्हें बहुत जरूरत पड़ेगी। कहीं पर तुम्हें कुछ भूलना होगा, कहीं पर तुम्हें कुछ याद रखना होगा। जो बातें अच्छी नहीं होंगी तुम भूल जाना, और जो बात अच्छी होगी उसे याद रख लेना। हम क्या करते हैं, हमने उल्टा कर दिया, भगवान के इस ज्ञान को हमने थोड़ा उल्टा कर दिया। जो बात याद रखनी चाहिए उसको हम भूल जाते हैं, और जो बात भूलनी चाहिए उसको हम बार बार याद करते रहते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं, हमारी प्रसन्नता हमसे दूर चली जाती है। परंतु एक छोटा बच्चा क्या करता है, जो बात उसे भूलना है उसे तुरंत भूल जाता है। आप एक बच्चे को अभी आप डांट दो, रोएगा, दो मिनट के बाद प्यार से उसको बुलाओ, अपने पास आपके गोद में आ जाएगा। एक किसी बड़े व्यक्ति का अपमान कर दो, फिर उसको अपने पास बुलाओ, आएगा नहीं आएगा ना, क्योंकि वो पिछली बात को भूला नहीं है, इसने मेरा अपमान किया था। एक व्यक्ति आपको धोखा दे दे, जो आपके बहुत नजदीक है, प्यारा है, विश्वास पात्र है, थोड़े समय के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो और आपके पास फिर से वो आपके नजदीक आने की कोशिश करे, आप उसे आने देंगे, आप उसके नजदीक जाएंगे। हमें वो बात याद रहती है। एक बच्चा भूल जाता है, उसे अपने पराये में भेद नहीं है, बहुत निर्मल है वो, इसलिए वो हमेशा हंसता रहता है, खुश रहता है, गहरी नींद सोता है, उसे कोई बीमारी नहीं होती है। हम भी बातों को भूलने की आदत डालें। इंसान जब किसी बात को पकड़ के रखता है, परिवारों में बहुत सारी बातें होती है ना, बच्चे कहना नहीं मानते, पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है, बुजुर्ग होने के बाद बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, बिजनेस में कई बार लॉस हो जाता है, कई बार पड़ोसी अच्छे नहीं होते हैं, बहुत दुखदायी होते, बहुत सारी समस्याएं आती हैं और हम सबको पकड़ के रखते हैं। परंतु जब हम किसी बात को पकड़ के रखते हैं तो एक तरह की मानसिक पीड़ा अंदर होती रहती है, एक धीमी धीमी हल्की एक मेंटल पेन होता रहता है और वो हमें कभी भी योगी नहीं बनने देता, हमारे मन को एकाग्र नहीं होने देता। मन को एकाग्र होने के लिए प्रसन्न रहना भी बहुत जरूरी है, इससे हमारी प्रसन्नता चली जाती है। एक बार एक प्रोफेसर आए क्लास में, अपने जितने भी स्टूडेंट्स थे सबके हाथ में खाली कप दे दिया, बोला सब उसको ऐसे पकड़ के हाथ खड़ा करके रखो। 5 मिनट हो गया, पूछा कुछ हो रहा है, स्टूडेंट्स ने बोला नहीं कुछ नहीं हो रहा है। 10 मिनट के बाद पूछा कुछ हो रहा है, नहीं कुछ नहीं हो रहा है। 15 मिनट के बाद पूछा कुछ हो रहा है, बोला सर हल्का हल्का दर्द हो रहा है। बोला ठीक है पकड़ के रखो। आधे घंटे के बाद पूछा कुछ हो रहा है, कहता सर बहुत पेन हो रहा है। बोला फिर नीचे रख दो। सबने कप को नीचे रख दिया। अब कैसा लग रहा है? आराम लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वो टीचर पढ़ाने लगा, एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, उसके मन में ये सवाल पैदा हुआ, आखिर ये क्यों एक्सरसाइज कराया, ये एक्टिविटी हमारे सर ने क्यों कराया। बोला सर ये एक्टिविटी कराने का मतलब क्या है, इसके पीछे लेसन क्या है। तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि इस एक्टिविटी के पीछे लेसन यही है कि जब हम किसी चीज को पकड़ के रखते हैं, खाली कप जिसका कोई मतलब नहीं, उसी तरह से जब हम व्यर्थ बातों को पकड़ के रखते हैं तो जिस तरह से हाथ को दर्द हो रहा है ना, मन को भी दर्द होता है, मन को भी एक प्रकार की पीड़ा होती है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ते रहो, किसी भी चीज को पकड़ के मत रखो, सब भूलते जाओ तो जीवन सहज और सरल बनता जाएगा। बाबा की बताई हुई दूसरी धारणा। तीसरी बात, परिस्थितियां जब भी जीवन में आती हैं मन में बहुत अधिक व्यर्थ पैदा करती हैं, चाहे वो परिस्थिति हमारे लौकिक परिवार की हो, अलौकिक परिवार की हो, अपने देह से रिलेटेड हो या दूसरों से रिलेटेड हो, जो हमारे नजदीक हैं या जो हमारे नजदीक नहीं भी हैं, परिस्थितियां मन में बहुत उथल पुथल मचाती हैं। बाबा कहते हैं साक्षी रहने का अभ्यास करो। ये बहुत अच्छी धारणा है एक योगी के लिए, साक्षीपन का अभ्यास, देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, अर्थात उस बात का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। आंखें हैं, सबके बीच में रहना है, चीजें दिखेंगी, हम आंखें बंद करके नहीं रख सकते, परंतु बाबा कहते हैं कि देखते हुए भी नहीं देखना है, साक्षी रहना है, इस संसार को ऐसे देखना है जैसे सब एक खेल है, एक ड्रामा चल रहा है और मैं उसका दृष्टा हूं, दर्शक हूं मैं। नहीं तो इस संसार में इतना दुख है, इतनी परेशानियां हैं कि यदि हम उन बातों पर ध्यान देने लग गए तो हम कभी भी योगी नहीं बन पाएंगे। मन सदैव उन बातों में उलझा रहेगा। हमारे आसपास बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, हम चाहते हैं वो सब ना हो, यह सब कुछ हमारे अनुसार हो। बाबा कहते हैं ये संसार का नियम ही नहीं है कि सब कुछ हमारे अनुसार हो। हम भी सबके अनुसार नहीं चल सकते, ये संसार भी हमारे अनुसार नहीं चल सकता, परंतु जब हमारे आसपास कुछ अच्छा नहीं होता है तो मन में संकल्प चलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उन बातों पर, उन परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता है, तब मन में और अधिक संकल्प विकल्प चलते हैं। घर में मेरा बेटा है, कुसंग में आ गया, नहीं मानता कहना, परिस्थिति है ना, ये एक आजकल घरों में आम रूप से होता है। बहुत ज्यादा संकल्प चलता है, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति विश्वास पात्र नहीं है। अगर पति को पता पड़े कि मेरी पत्नी मेरे प्रति वफादार नहीं है, या पत्नी को पता पड़ जाए कि मेरा पति मेरे प्रति वफादार नहीं है, मन में संकल्प चलता है। कोई अपना ही बहुत सगा समय पर धोखा दे जाए, मन में संकल्प चलता है। और इंसान की स्थिति बुरी और तब हो जाती है जब वो कुछ कर नहीं सकता। बहुत पहले मैं यूपी में एक जगह गया था, तो मुझे एक गीता पाठशाला पर लेकर के गए, बहुत पुराना गीता पाठशाला, एक युगल थे, वृद्ध थे, वो लोग उसको चलाते थे, सामान्य परिवार से थे, कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं था उनके पास, परंतु बहुत अच्छी फैमिली, एक ही बेटा था, बेटे की शादी हो गई थी, दो छोटे छोटे बड़े अच्छे सुंदर सुंदर बच्चे, बड़े संस्कारी दोनों बच्चे, बहुत अच्छे। उनका जो बेटा था वो भी बहुत अच्छा, परंतु धीरे धीरे पता नहीं कैसे वो कुसंग में आ गया और वो नशा करने लगा, शराब पीना और क्या क्या जो नशे होते हैं वो करना शुरू कर दिया। वो लड़का कभी अपने पिता के सामने आंख उठा करके भी नहीं देखता था, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, वो कुसंग में आया, देर से आता, शराब पीकर घर में आता, माता पिता को पता पड़ा, पिता ने उसको डांटा, समझाया, कुछ समय तक वो पिता की बातों का जवाब नहीं देता था। पर कहते हैं ना, ये जो व्यसन ऐसी चीज है जो हमारी बुद्धि को हर लेते हैं, इंसान को बिल्कुल जानवर के समान बना देते हैं, हम अपने सारे संस्कारों को भूल जाते हैं। थोड़े समय के बाद वो बच्चा रिएक्ट करने लगा, अपने पिता की बातों का जवाब देने लगा, फिर धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि वो सब काम धाम छोड़ दिया, कभी भी अपने दोस्त उसके आ जाते थे, लेकर के जाते थे, दिन दिन भर गायब, कभी कभी शाम को जाता पूरी रात गायब रहता, और सुबह आता पूरी तरह से नशे में धुत, घर में आकर सो जाता, पत्नी को मारना, बच्चों को मारना, कई बार तो उसने अपने माता पिता पे भी हाथ उठाया। तो मुझे जो भाई लेकर के वहां गए थे, उन्होंने ये सारी बातें मुझे पहले बता दी थी। अब सोचिए कि किसी घर में इस तरह की परिस्थिति, ये एक परिस्थिति है, ऐसी तो बहुत सारी परिस्थितियां जीवन में आती हैं, तो इंसान के मन में कितना संकल्प उठेगा, योग लगेगा उसका, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये संसार तो है ही दुखों का संसार, यहां दुख नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, अगर यहां ही सुख मिल जाए तो सतयुग की कामना कौन करेगा। अगर हमारे पास ये समझ है, साक्षी दृष्टा की हमारी अवस्था पक्की है, तो हम इस हाल में भी खुश रह सकते हैं। अब वहां पर हमने एक चीज देखा, माता और पिता, माता संपूर्ण ज्ञानी नहीं है, हालांकि दोनों ही ज्ञानी हैं, परंतु माता की अवस्था इतनी अच्छी नहीं, माता बहुत परेशान दुखी, बार बार रोए, मुझे बार बार ये बताए। लेकिन जो पिता बिल्कुल वृद्ध हो चुके हैं, जिनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, वो खुश हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जब पहले पहले इसको ये लगा तो आदत पड़ी तो मेरे मन में संकल्प चलते थे, फिर धीरे धीरे मैंने ये समझाया कि हे मन, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं, ये तो अपने अपने कर्मों का हिसाब है। ये संतान मेरे पास मेरे हिसाबों का हिसाब लेने आई है, इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना है। फिर कहा कि मैंने दूसरा संकल्प लिया, ये एक ड्रामा है, खेल है, ये संसार का खेल, और हर खेल में सीन तो आते ही है ना, सीन सिनेरियां आती हैं, ये भी ड्रामा का एक दृश्य है, इसको भी एंजॉय करना है। हमने अपना प्रयास जारी रखा लेकिन अपने मन को प्रभावित नहीं होने दिया। मैंने देखा वो दादाजी की अवस्था इतनी अच्छी थी, कोई प्रभाव नहीं अपने बच्चे के इस बुरी स्थिति का। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान की एक ये पॉइंट आत्मा को बहुत सुखी और शांत रख सकती है। थोड़ा कठिन है परंतु अभ्यास करने से सब सहज हो जाता है, इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान का अभ्यास करो। ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं, यदि भोजन हमारा शुद्ध नहीं है तो भी हमारा मन कभी शांत नहीं रह सकता है। आप करके देख लें, आप अनुभव करके देखें, यदि हमारा भोजन शुद्ध नहीं है तो मन कभी भी शांत नहीं रह सकता। इसलिए बाबा भोजन को बहुत महत्व देते हैं। 84 जन्मों में हमने बहुत खाया है, जितना हमने खाया है उतना तो किसी ने नहीं खाया होगा। अभी भी खाना है क्या? एक जन्म तो हम भगवान के लिए स्वाद का त्याग कर ही सकते हैं ना। बाबा हमारे लिए कहते हैं कि बच्चे 56 प्रकार के भोग तुम्हें मिलते हैं सतयुग में, और वो 56 प्रकार के भोग हम ही खाते थे, कोई और नहीं खाता था। इस एक अंतिम जन्म में क्या हम भगवान के लिए, अपनी अच्छी साधना के लिए भोजन का त्याग नहीं कर सकते? करना चाहिए। मन की अपवित्रता, अगर हमारा मन किसी के देह में अटक जाए तो भी मन शांत नहीं रहता, बहुत व्यर्थ चलते हैं। और योगियों में एक बहुत बड़ी समस्या है, हम बाबा के बन गए, ब्रह्मचर्य की धारणा तो हमने कर ली, स्थूल प्योरिटी को हमने मेंटेन कर ली, बाबा को उससे शिकायत नहीं है, लेकिन क्या हमारा मन शुद्ध बना है? अभी भी हम मन से विकारों का सुख लेने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि स्थूल रीति हम विकारों का सुख नहीं ले सकते, हमारी अवस्था अब इतनी ऊंची तो उठी गई है, परंतु कहीं ना कहीं हम मन से विकारों को भोगने की कोशिश करते हैं, देह को याद करते हैं, मानसिक अपवित्रता। बाबा कहते हैं जहर है एक योगी के लिए, मन से किसी को भी याद नहीं करना है, भूलते जाओ। बाबा कहते हैं देह को भूलना है और दूसरे के देह को भूलना है तो बाबा कहते हैं पहले अपने देह को भूलो। जब तक ये अपना देह नहीं भूलेगा, हम दूसरे के देह को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। बड़ा सुंदर कनेक्शन है इसका, इसके पीछे भी एक विज्ञान है, अलग ही इसका एक टॉपिक है, उसकी अभी चर्चा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इस देह से दूसरों का देह जुड़ा हुआ है। अपने देह को भूलेंगे, दूसरों का देह अपने आप भूलता जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये छोटी छोटी जो धारणाएं हैं हमें योग के मार्ग पर आगे ले जाती हैं। ऐसे और भी बहुत सारे कारण हैं जो हमारे मन को अशांत करते हैं, हम जब यहां से जाएं, बैठ करके उनकी एक लिस्ट बनाएं, हम छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएं अपने सेवा केंद्र पर और ज्ञान की चर्चा करें, मंथन करें। हम लोग जब यज्ञ में शुरू शुरू में आए, यज्ञ में सेवाएं इतनी नहीं थी, यज्ञ का विस्तार इतना नहीं था, समय हम लोग के पास भी बहुत होता था। हम लोग ग्रुप्स बना के रखते थे, ग्रुप्स आठ आठ दस दस का ग्रुप बनाते थे और बैठकर वर्कशॉप करते थे। आप भी अपनी सेंटर पर बनाए, रोज समय नहीं मिलता, संडे को तो छुट्टी रहती है ना, मुरली क्लास के बाद 2 घंटा इसमें डिवोट करें, चिंतन करें और निकालें कौन कौन सी बातें मन को डिस्टर्ब करती हैं, योगी नहीं बनने देती, और फिर एक एक पॉइंट को लेकर के उस पर एक एक मास पुरुषार्थ करें। आप देखेंगे जीवन बदल रहा है, जीवन का सुख मिल रहा है। ये जीवन जिसके लिए हम खुद ही दुखी रहते थे, खुद को ही अच्छा लगने लगेगा। ज्ञान कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वयं भगवान का दिया हुआ ज्ञान क्यों न हो, परंतु यदि उसका प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं है, वो आचरण में नहीं आता है, तो उसका कोई मोल नहीं है। नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज ऑफ नो यूज, नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज ऑफ नो यूज वेस्ट। ज्ञान का हमें अभ्यास करना है, जितना जितना हम ज्ञान का अभ्यास करेंगे, चिंतन करेंगे, वो हमारे आचरण में आएगा। संसार सुन करके नहीं सीखता है, देख करके सीखता है। हमें संसार को मुख से ज्ञान नहीं देना है, अपने आचरण से ज्ञान देना है, उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। एक बार द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों को पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने सबको एक पाठ दिया, बोला बच्चों आपको एक पाठ याद करना है सबको, और वो पाठ था कि क्रोध करना अच्छा नहीं है, क्रोध करना अच्छा नहीं है, मैं आज से क्रोध नहीं करूंगा। ये सबको याद करके आना है। सभी चले गए, अगले दिन सभी आए, सबसे पूछा आप लोगों ने पाठ याद किया, सबने हाथ खड़ा किया, हाँ गुरुदेव हमने ये पाठ याद कर लिया। युधिष्ठिर ने हाथ खड़ा नहीं किया, पूछा क्या बात है तुमने ये पाठ याद नहीं किया, बोला नहीं गुरुदेव मुझे ये पाठ याद नहीं हुआ आज। कोई बात नहीं, कल प्रैक्टिस करना, कल ये पाठ याद करके आना। कल फिर वही प्रश्न पूछा, पाठ याद किया, युधिष्ठिर ने कहा नहीं गुरुदेव आज भी मुझे ये पाठ याद नहीं हो पाया, बोला कोई बात नहीं कल याद करके आना। 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 10वें दिन फिर से गुरुजी ने वही प्रश्न पूछा, युधिष्ठिर क्या तुमने पाठ याद किया, युधिष्ठिर ने बोला नहीं गुरुदेव मुझे ये पाठ अभी भी याद नहीं हुआ। आचार्य द्रोण को एकदम से गुस्सा आ गया और उन्होंने कस के एक तमाचा उसके गाल पर रख दिया, बोला बेवकूफ इतने दिनों से तुम एक ही पाठ पर अटका हुआ है, सबने याद कर लिया और तुमने याद नहीं किया, 10 दिन हो गए एक पाठ तुझे याद नहीं हो रहा है। बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव लगता है अब ये मुझे याद हो गया, अब मुझे ये पाठ याद हो गया। आचार्य द्रोण को अपनी गलती की महसूसता होती है, उनके आंखों में आंसू आ जाती है, और युधिष्ठिर को वो गले लगाते हैं और वो कहते हैं कि बेटा तुझे तो ये पाठ याद हो गया लेकिन लगता है कि मैं इस पाठ को भूल गया। हम सब भी संसार को नसीहत देते हैं, ज्ञान बांटते हैं, अच्छी बातें सुनाते हैं, परंतु क्या वो अच्छी बातें हमारे जीवन में हैं? अगर जीवन में उन चीजों की धारणा नहीं है तो हमारे बोल में कभी भी शक्ति नहीं आएगी। हम दूसरों को कितना भी नसीहत दे। आज घर परिवार में सबसे बड़ी समस्या यही है ना, बच्चे कहना नहीं मानते, हमारे अनुसार नहीं चलते। कारण क्या है? हमारे बोल में बल नहीं है, बोल में शक्ति नहीं है। जो कुछ हम बोलते हैं अपने बच्चों को, उस चीज को हमने ही अपने जीवन में धारण नहीं किया है। हम बच्चों को नसीहत देते हैं, बच्चे कुसंग से बचो, और हम कुसंग में रहते हैं। हम बच्चों को कहते हैं लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं है, और पति पत्नी घर में रोज लड़ते हैं। हम बच्चों को नसीहत देते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए, और हम 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं। प्रभाव पड़ेगा? बच्चों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा, ये संसार सुन करके नहीं सीखता, देख करके सीखता है। अगर अपने बोल में बल भरना है तो उन धारणाओं को जीवन में अपनाते चले, अपने मन को धीरे धीरे शांत करते चले। कम सोचें, धीरे सोचें, तो धीरे धीरे हमारा योग गहरा होता जाएगा। और जैसे जैसे हमारा योग गहरा होगा, बाबा कहते हैं मेरी नजर तुम पर पड़ेगी। हर एक पर भगवान की नजर नहीं पड़ती है, भगवान की नजर उन पर पड़ती है जो सचमुच सुपात्र हैं, योग्य हैं और योगी हैं। और एक बार अगर भगवान की नजर हम पर पड़ गई तो हम निहाल हो जाएंगे, हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। ओम शांति।